أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد. پیارے دوستوں اور ہمارے اس کاریہ کرم کے سبھی درشکوں کو ہمارا سلام. ہم اپنے آج کے کاریہ کرم میں جن مسئلوں کے بارے میں بات چیت کریں گے اس کا عنوان اور شیرشک ہے یاتری کے روزے. آج ہم مسافر یا یاتری کے روزوں کے بارے میں مسئلوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے اور جو آوشک چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ پریتن ہوگا کہ اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے. یاتری کے روزوں کے سمبندھ میں سب سے پہلی چیز جو جاننے کے یوگ ہے اور ہم کو جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر وہ یاتری جس کی یاترا میں اس کی نماز قصر ہے، یعنی وہ چار رکعتی نماز کو دو رکعتی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اپنی یاترا کی اودھی میں اپنی وشیش شرطوں کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. یعنی اگر رمضان میں وہ یاترا پر گیا ہوا ہے تو وہ ان یاتراؤں میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اور جب روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کو یاترا کی سماپتی کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی. لیکن اگر یاتری اس پرکار کا ہے کہ وہ اپنی یاترا کی اودھی میں بھی پوری نماز پڑھتا ہے، یعنی چار رکعت ہی نماز کو چار ہی رکعت پڑھتا ہے، جیسے اگر کوئی ایسا ویکتی ہے جس کا کاریہ ہی یاترا کرنا ہے، جیسے ڈرائیور، پائلٹ، ٹرین کے ڈرائیور، پینٹری میں کام کرنے والے، اس پرکار کے لوگ، تو یہ لوگ اپنی یاترا کے اودھی میں بھی روزہ رکھیں گے. یعنی جس کو نماز قصر پڑھنا ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا، اور جس کو نماز پوری پڑھنا ہے اس کو روزہ رکھنا ہوگی. جب ہم یاتری کے روزوں کے سمبندھ میں احکام کی کتابوں کو، احکام کی پستکوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ باتیں ہم کو دکھائی دیتی ہیں کہ یاتری کا روزہ کن شرطوں کے ساتھ اور کیسے کیسے قصر ہوگا اور کیسے کیسے قصر نہیں ہوگا. یعنی وہ کون سے ایسے سمے ہوں گے جہاں پر ایک یاتری کو روزہ نہیں رکھنا ہوگا، اور کون سے ایسے سمے جہاں پر روزہ رکھنا ہوگا، یا کون سے ایسے سمے ہیں کہ اگر روزہ رکھ لیا ہے تو روزہ باطل ہوگا، اور کون سے ایسے سمے ہیں کہ روزہ اگر رکھا ہوا ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز، اگر ہم روزے اور یاترا کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں تو اس پرکار ہو سکتی کہ روزہ یاترا کے آرمبھ میں اس سے سمبندھت کیا مسئلے ہو سکتے ہیں، کیا مسئلے پیش آ سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز، اگر انسان رمضان کے مہینے میں ظہر سے پہلے یاترا پر جائے، یعنی ظہر کی اذان کے سمے سے پہلے اگر رمضان میں انسان یاترا پر جا رہا ہے، اور جیسے ہی وہ حد ترخص تک پہنچے گا، حد ترخص کیا تھی ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، پھر بھی سنکھیپ میں یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں. حد ترخص اس استھان کو کہا جاتا ہے جہاں پر پہنچنے کے بعد انسان کو اپنے محلے یا اپنے شہر کی دیواریں دکھائی دینا بند ہو جائیں یا وہاں کی آواز سنائی دینا بند ہو جائے، تو وہ استھان حد ترخص کہلایا جاتا ہے جہاں کے بعد سے نمازیں قصر ہو جایا کرتی ہیں. تو اگر انسان رمضان کے مہینے میں ظہر سے پہلے یاترا پر گیا ہے تو جیسے ہی وہ حد ترخص پر پہنچے گا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور اگر یعنی جب حد ترخص پر پہنچا ہے، پہلے سے روزہ رکھ رکھا تھا لیکن جیسے ہی حد ترخص پر پہنچا روزہ باطل ہو گیا، اب اس کو کھانے پینے وغیرہ کی انومتی ہے، وہ چھوٹ ہے، وہ کھا سکتا ہے. لیکن اگر انسان نے، اس مسلمان ویکتی نے، حد ترخص پر پہنچنے سے پہلے ہی کچھ کھا پی لیا، یعنی روزہ توڑ دیا، ایسا کاریہ کر لیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہاں پر احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو کفارہ دینا ہوگا. یعنی جس سمے، اس کا ارتھ یہ نکلتا ہے کہ جس سمے ہم یاترا پر جا رہے ہیں تو یاترا پر جانا ہی روزہ چھوڑنے کا کارن نہیں بنے گا، بلکہ یاترا کے لیے آوشک یہ ہے کہ ہم ظہر سے پہلے اپنے گھر سے یاترا پر نکلیں، اور جس سمے حد ترخص پہنچ جائیں، حد ترخص سے نکل جائیں، उस समय हमको खाने पीने या किसी ऐसे कार्य करने की अनुमति है जिससे रोज़ा टूटता है। अगर जोहर से पहले निकले हैं और तरखो से पहले ये कार्य कर दिया तो हमारे ऊपर कज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी उस रोज़े का वाजिब हो जाएगा। उस ये तो हुआ कि जब इंसान अपनी यात्रा पर जा रहा था जोहर की नमाज़ से पहले। अब अगर यात्रा पर इंसान जा रहा है जोहर की नमाज़ के बाद, तो उसका क्या रोज़ा कसर होगा या रोज़ा बातिल होगा या नहीं होगा, उसके संबंध में क्या मसले हैं? तो यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर इंसान अपनी यात्रा पर जोहर के बाद जा रहा है, यानी जोहर का समय गुजर गया उसके बाद जा रहा है, तो उसका रोज़ा बातिल ही, उसका रोज़ा सही है और उसको चाहिए कि अपने रोज़े को समाप्त करे, पूरा रोज़ा रखे। तो ये जो चीज़ भी हमने बताया, उस समय जब इंसान यात्रा को आरंभ कर रहा है, अब उसके बाद यात्रा समाप्ति के अवसर पर किस प्रकार हमारे रोज़े की स्थिति होगी। तो अगर इंसान यात्रा जिस समय समाप्त कर रहा है, यानी अपनी यात्रा ऐसी जगह पर पहुंच रहा है जहां पर उसको रुकना है, तो अगर इंसान किसी ऐसे स्थान पर पहुंच रहा है जो स्थान उसका वतन है, या ऐसे स्थान पर पहुंच रहा है जहां उसको 10 दिन रुकना है, तो अगर ये वतन या वो 10 दिन रुकने का स्थान जहाँ पहुँच रहा है जोहर से पहले पहले पहुँच रहा है, तो अगर उसने जोहर से पहले अगर पहुंच रहा है, तो अगर उसने रोज़े को बातिल करने वाला कोई काम अंजाम नहीं दिया है, तो उसका रोज़ा सही है, उसको चाहिए कि नियत कर ले। यानी हम निकले अपने घर से, हम अपनी यात्रा को समाप्त कर रहे हैं, अपने घर पहुंच रहे हैं, जोहर से पहले मान लीजिए 10 बजे या 11 बजे हम अपने घर पहुँच जाते हैं, तो अगर घर तक पहुँचने से पहले पहले हमने कुछ खाया पिया नहीं है या कोई और ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे हमारा रोज़ा बातिल हो जाता है, तो हमको चाहिए कि जैसे ही हम अपने घर पहुंचते हैं या उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां हमको कम से कम 10 दिन रुकना है, तो हमको चाहिए कि हम नियत कर लें उसी समय, और नियत करने के बाद अपने रोज़े को आगे पूरा करें और ये हमारा रोज़ा सही होगा। उसके बाद ये हुआ कबला जोहर, जोहर से पहले अगर हम पहुँच जाते हैं। अब अगर हम अपने घर में या उस स्थान पर जहाँ हमको कम से कम 10 दिन ठहरना है या कम से कम 10 दिन ठहरने का इरादा करके हम आए हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं जोहर के बाद, यानी अगर मान लीजिए जोहर का समय 12:30 बजे होता है, तो हम 1 बजे या 12:45 पे या इस प्रकार किसी टाइम पे पहुँचते हैं, तो अगर हम जोहर के बाद पहुँच रहे हैं तो उस दिन का रोज़ा हमारे पर वाजिब नहीं है, रोज़ा हमारा बातिल हो जाएगा और हम खा पी सकते हैं और कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जो रोज़े के तोड़े जाने या रोज़े के बातिल होने का कारण बनता है। जब हमने आपके सामने जो बताया था कि जब जोहर से पहले पहुँचता है, तो हमने उसमें दो चीज़ें थी, वो एक दूसरी चीज़ भी हम यहाँ पर आपके सामने बयान करें ताकि मसला बिल्कुल स्पष्ट रहे। हमने पहली बात ये बताई थी कि जब जोहर से पहले इंसान पहुँच रहा है और पहुँचने से पहले कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो रोज़े को तोड़ता है, अगर नहीं किया तो अपनी नियत को पूरा आगे बढ़ा के रोज़े को रख लेगा, लेकिन अगर वहाँ पहुँचने से पहले, अपने वतन पहुंचने से पहले, उस स्थान पर पहुंचने से पहले जहां 10 दिन रुकने का इरादा है, कुछ खा लिया था, कुछ पी लिया था या कोई ऐसा कार्य कर दिया था जिससे रोज़ा बातिल होता है, तो उस दिन का रोज़ा उसके ऊपर वाजिब नहीं होगा और उस दिन उसको रोज़ा रखने की आवश्यकता नहीं है। ये वो चीज़ें थीं जो रोज़े के अहकाम से संबंधित थीं, वो रोज़े जो यात्री से संबंधित होते हैं। यहाँ पर एक बात और आपके सामने मैं स्पष्ट कर दूँ यहाँ पर, कि जिस समय इंसान अपने यात्रा को समाप्त कर रहा है, यानी अपने मकसद पे, उस लक्ष्य पे, वो जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँच रहा है, तो उस समय जो हमने आपको बताया था कि जब यात्रा आरंभ कर रहा था तो हद तरखुस के बाद उसको रोज़ा तोड़ने की अनुमति थी, तो यात्रा की समाप्ति में हद तरखुस का कोई प्रभाव नहीं है, यानी हद तरखुस असलन मान्य नहीं है यहाँ पर। यानी क्या मतलब? यानी अर्थ उसका ये हुआ कि अगर इंसान अपनी यात्रा की समाप्ति कर रहा है और जोहर से पहले पहले ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जो हद तरखु से उसके वतन का, या हद तरखु से उस स्थान का जहां पर उसे 10 दिन रहने का इरादा कर रखा है, तो हद तरखु पर पहुंचने के साथ ही वो रोज़े की नियत नहीं कर सकता है, बल्कि अगर हद तरखु वहाँ पहुँचने से पहले पहले जोहर का टाइम बीत जाता है, तो उस दिन का रोज़ा उसके ऊपर वाजिब नहीं होगा, उस दिन का रोज़ा उसके ऊपर बातिल है। इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि जब हम पलट रहे हैं अपनी यात्रा से, जिस समय अपनी यात्रा को समाप्ति तक पहुंचा रहे हैं, उस समय हद तरखुस की मान्यता नहीं है, हद तरखुस कोई प्रभाव हमारी यात्रा की समाप्ति पर नहीं रखता है। उसके बाद एक और बात जो मैं आपके सामने बयान कर दूँ कि जब रमज़ान का महीना चल रहा हो, जिस समय ईश्वर ने हमारे ऊपर रोज़े को वाजिब कर रखा है, उस समय एक मुसलमान के लिए यात्रा करना हराम नहीं है, यानी रमज़ान के महीने में भी यात्रा कर सकता है। लेकिन अगर उसकी यात्रा रोज़े से बचने के लिए हो, मान लीजिए किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ गर्मी बहुत है, वो गर्मी में रोज़ा रखने से बचने के लिए वो यात्रा पर चले जाए, तो ये हमारे फुकहा कहते हैं ये मकरूह है लेकिन हराम नहीं है। ये वो चीज़ें हुई जो हमने आपके सामने ही बयान की, ये वो मसले थे जो यात्री के रोज़े से संबंधित थे। अब उसके बाद हम आपके सामने कुछ बातें बयान करेंगे, जैसे वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन से ऐसे निशानियाँ और कारण हैं जो हमारे सामने ये स्पष्ट करते हैं, ये साबित करते हैं कि किसी महीने की पहली तारीख हो गई है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो महीने की पहली तारीख को साबित करते हैं। सबसे पहली चीज़, यानी ये जो हम महीने की पहली तारीख कह रहे हैं, यहाँ पर हमारा तात्पर्य ईस्वी के महीने नहीं है, बल्कि हमारा तात्पर्य वो महीने हैं जो चांद के महीने कहे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए महीने की पहली तारीख को साबित करती है, वो ये है कि इंसान स्वयं चांद देख ले, कि पहली तारीख का चांद उसको दिख जाए तो पहली तारीख साबित हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो हमारे लिए चांद को साबित करती है, वो ये है कि कुछ लोग, यानी कई लोग हमारे सामने आकर ये कहें कि हाँ हमने चांद देखा है। अगर ये कहते हैं और हमें उनके कहने पर इस बात का विश्वास हो जाता है कि हाँ वाकई चांद हो गया है, तो ये भी हमारे लिए चांद के होने को साबित करता है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो चांद को साबित करती है, वो ये कि दो सच्चे लोग हमारे सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हमने चांद देखा है। अगर हमें उनके कहने पर विश्वास हो जाता है तो इन आदिल लोगों के कहने से चांद की पहली तारीख साबित हो जाएगी। उसके बाद एक और तरीका जिससे चांद साबित हो जाता है, वो ये है कि शाबान का महीना जो चल रहा है उसके 30 दिन गुजर गए हों। जैसे 30 दिन गुजर जाएंगे तो उसके बाद जो पहला दिन आएगा, यानी 31वां दिन जो होगा, वो रमज़ान की असल में पहली तारीख होगी। इसी प्रकार अगर रमज़ान के 30 दिन बीत जाएँ तो उसके बाद जो 31वां दिन आएगा वो शव्वाल की पहली तारीख होगी। इस प्रकार भी चांद साबित हो सकता है। उसके बाद चांद के साबित होने का एक तरीका ये है कि हाकिम शरा ये हुक्म दे दे या आदेश दे दे कि चांद पहली तारीख हो गई है, चांद निकल आया है। लेकिन यहाँ पर हमारे फुकहा के बीच में थोड़े से वैचारिक रूप से मतभेद पाए जाते हैं। जैसे आयतुल्लाह सिस्तानी ये कहते हैं कि हाकिम शरा का आदेश चांद की पहली तारीख को साबित नहीं करता है, उसका आदेश इस चीज़ को साबित नहीं करेगा कि चांद की पहली तारीख हो गई है। उसके बाद इसी संबंध में कुछ मसले आपके सामने मैं आप बयान कर दूं ताकि बात स्पष्ट हो जाए और यहीं पर हम अपनी बात को समाप्त कर दें कि जो खगोलवादी होते हैं या मुनज्जिम जिनको कहा जाता है, इनके कहने से चांद की पहली तारीख साबित नहीं होती है। मगर ये कि इनके कहने से हमको इस बात का विश्वास हो जाए कि हाँ इन्होंने जो कहा है सही कहा है और चांद हो गया है, तो हमारा जो विश्वास है ये कारण बनेगा कि हाँ पहली तारीख मान ली जाएगी, लेकिन उनके कहने से पहली तारीख साबित नहीं होती है। दूसरी चीज़, जैसे हम लोग अपने आम समाज में देखते हैं, लोग कहते हैं कि अरे आज तो चांद बहुत देर तक निकला रहा, चांद बड़ा है, इसका मतलब आज दूसरी तारीख है। तो हमारे फुकहा कहते हैं चांद का बड़ा होना या चांद का देर तक निकले रहना कि दूसरी तारीख होने का मापदंड नहीं है। चांद का बड़ा और छोटा होना यहाँ पर मेयार नहीं है। उसके बाद चांद के साबित होने में ये है कि अगर किसी शहर में या किसी देश में चांद दिखाई दे तो ये उसी शहर उसी देश के लिए मान्य होगा, दूसरे देश और दूसरे शहरों के लिए मान्य नहीं होगा। मगर ये कि इंसान को इस बात का पता हो कि ये जो दोनों देश हैं, जो दोनों शहर हैं, उन दोनों का उफुक और उन दोनों का क्षितिज एक है, अगर ये मालूम है तो हाँ एक शहर का चांद दूसरे शहर के लिए सही होगा, वरना एक शहर में चांद निकलना दूसरे शहर की पहली तारीख के लिए साबित नहीं होगा। उसके बाद जिस दिन इंसान को ये नहीं पता है कि ये जो दिन चल रहा है ये रमज़ान की आखिरी तारीख है या शव्वाल की पहली तारीख है, यानी अभी चांद की स्थिति स्पष्ट नहीं है कि पता नहीं ईद का दिन हुआ है या नहीं हुआ है, अगर इंसान को नहीं पता है कि आज का जो दिन है वो ईद का है या नहीं है या रमज़ान की एक और आखिरी तारीख है, तो इस दिन इंसान को चाहिए कि रोज़ा रखे। हाँ अगर दिन के किसी समय में उसको इस बात का पता चल जाता है कि ये आज शव्वाल की पहली तारीख यानी ईद का दिन है तो उसको चाहिए कि कुछ खा पी ले या रोज़ा को तोड़ने वाला कोई कार्य अंजाम दे दे। उसके बाद जो हमने आपके सामने ही बयान किया था कि हाकिम शरा के कहने से भी चांद साबित हो जाता है, जिसमें आयतुल्ला सिस्तानी का फतवा थोड़ा अलग था। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली चीज़ है, भले ही हम अगर हाकिम शरा किसी चीज़ का आदेश देता है, मसलन अगर चांद के हो जाने ही का आदेश देता है, तो हर वो व्यक्ति जो मुसलमान है, जो शिया है, भले ही उस हाकिम शरा की तकलीद और उसका अनुसरण करता हो या ना करता हो, लेकिन अगर हाकिम शरा ने आदेश दे दिया है तो उसके आदेश का पालन करना आवश्यक है। यानी अगर आदेश दिया ये है कि आज मसलन ईद का दिन है, तो हर वो मुसलमान जो मुसलमान है और शिया है, चाहे उस हाकिम शरा की तकलीद करता हो या ना करता हो, उसको ये मानना पड़ेगा कि हाँ आज ईद है, आज शव्वाल की पहली तारीख है। तो हमने आज आपके सामने कुछ बातें पेश की, जिसमें से सबसे पहली चीज़ वो मसले थे जो यात्री के रोज़ों से संबंधित थे। उसके बाद हमने आपके सामने ये बयान किया कि कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे हमारे सामने ये बात स्पष्ट होती है, ये चीज़ साबित होती है कि आज चांद की पहली तारीख है। उसके बाद इससे संबंधित हमने आपके सामने कुछ मसले बयान किए। इसके बाद भी हम आपके सामने अहकाम संबंधित और भी कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी को ईश्वर की छत्र छाया में छोड़ता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।